ओम शांति। अपना ये राजयोग और कर्म योग है ना, कर्म करते भी योग में रहना है और योग में रहते कर्म करना है। हाँ? बताओ, कर्म करते भी योग में रहना है, इसको कर्म योग कहा जाता है, ठीक है। और योग में रहते कर्म करना है। हाँ, क्या बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाना। भाव अर्थ वही है कि योग में रहते कर्म करेंगे या कर्म करते योग में रहेंगे, एक ही बात है। जब योग में बैठेंगे तो कौन सा कर्म करेंगे, तब सूक्ष्म में एक ही कर्म है, याद में रहना। याद की यात्रा ये सूक्ष्म कर्म है, उसको कर्म नहीं कहा जाता है, उसको योग ही माना जाता है। अच्छा, अभी तो सब सुनकर के फरिश्ते बन गए। हाँ, जब जो बात सुनते हो उसके लिए मन में ऐसा होता है कि अभी अभी जो सुन रहे हैं अभी अभी अनुभव करते जाए, होता है ऐसा। अभी अभी गीत सुन रहे थे और उस गीत का मन के अंदर अभ्यास कहो अथवा वो लहर, जिस लहर में गीत गाया हुआ है, जिस गीत से वो प्रवाह बनता है, वो प्रवाह वो लहर अपने अंदर में इमर्ज होनी चाहिए, तभी तो कहेंगे। याद है अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा था, विशेष बात, किस बात पर विशेष ध्यान देना है। हाँ? विशेष ध्यान देना है अनुभव पर। सुनते तो बहुत हो, जो सुनते हो वो समझ में भी आता है, और जब पुराने हो जाते हैं तो उनों को फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम समझते ही हैं। और जो सुनते हैं वो समझा हुआ है, इसलिए उस पर अटेंशन कम हो जाता है। जब तक जो बात नहीं समझ में आती है तब तक तो उसको ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देते हैं, फिर उस पर सोचते हैं कि ये क्या बात है, समझने के लिए उस पर विचार करते हैं। लेकिन जब समझ में आ जाती है तो सुनने के बाद क्या करते हैं, करते हैं विचार। हाँ, है ना, सब अनुभवी इस बात का। हाँ, तो बाबा ने वही बच्चों का अनुभव बताया कि सुनते बहुत है, सुनते समय तो बड़े प्यार से सुनते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप जानते हैं ना, हम बहुत अच्छा किसको मानते हैं, जो अच्छा सुन करके अच्छा बन के दिखाए। तो हम अच्छे तो बन ही गए हैं, और बनना है या नहीं। हाँ, अब जो सुना आत्म प्रकाश भाई भी बता रहे थे, फरिश्तेपन की स्टेज, क्या क्या फरिश्तेपन में होता है, कैसे डबल लाइट स्वरूप अनुभव किया जाता है। तो जैसे जैसे ये बातें सुनते हैं वैसे वैसे अपने को उसका आभास माना, उसका प्रवाह आना चाहिए। सुनते समय तो चलो सुनाने वाला प्रवाह से सुनाता है, इसलिए अपने को अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रवाह अपने में बना रहे, अपने अंदर वो अनुभव जागृत हो, उसके लिए किस बात की आवश्यकता है। उसके लिए रिवाइज करने की, अर्थात अपने मन के अंदर बार बार वो बात याद आवे। जैसे जब कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको बार बार हम सोचते हैं ना, समझने के लिए, जो आज सुना उसका क्या अर्थ था, क्या मतलब था, फलाने ने ये कहा तो उसका क्या भाव है। तो सोचने से, बार बार सोचने से फिर समझ में आ जाता है। परंतु अभी तो हम ज्ञान समझ गए हैं, योग को भी समझ गए हैं, बाप को भी पहचान लिया है, बाप के शक्तियों को जान लिया है, ठीक है ना, बाप के गुणों की महिमा गाते रहते हैं, फिर बाकी क्या रह गया। इसलिए जब सुनते हैं तो ऐसा सुनते हैं जैसे हम जानते हैं, सुनने के प्रभाव में अच्छा लगता है, पर जानते हैं समझने के कारण उस पर फिर अपना मंथन नहीं चलता है। उसको बार बार हम विचार करते रहें, फिर उस पर सोचते रहें, फिर उसको याद करते रहें, है ना, सबको ये अनुभव। यहाँ सुना, देखो मधुबन में कितने क्लासेस मिलते हैं, कितना याद कर सकते होंगे, एक पीछे दूसरा, दूसरा पीछे तीसरा क्लास मिलता ही जाता है। कोई कोई कापियों में नोट करते जाते हैं परंतु रिवाइज करने की फुर्सत नहीं है। लौकिक दुनिया में काम से फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, और अलौकिक दुनिया के अंदर वहां भी फुर्सत नहीं है। फुर्सत कब मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, जो उस बात का अध्ययन करेंगे। तो फुर्सत निकालना, समय निकालना, वो अपने पर है। और ये तो ऐसी बातें हैं, अथवा ऐसे कहें बुद्धि का काम अथवा मन का काम तो ऐसा है, चाहे कितना भी शरीर व्यस्त रहे, अगर हमें किस बात पर सोचना है, कोई बात का चिंतन करना है, तो कितना भी शरीर व्यस्त होते हम उसका चिंतन कर सकते हैं। इसी कोई बाबा कहते हैं, कर्म करते योग में रहो, अर्थात याद अंदर बनी रहे। कैसे बनी रहेंगी, जब उसका चिंतन चलता रहेगा ना, चिंतन चलेगा तो जागृत रहेंगे, माना वो चेतनता अंदर चल रही है। चेतन शक्ति किसको कहा जाता है, जो चलता फिरता है ना। अगर मन के अंदर चिंतन नहीं चलता है तो वो क्या बन जाएगा, और जो चिंतन उसको करना चाहिए उसके बदले अगर दूसरा करता है तो उसका रूप बदल जाएगा ना। वो अपना काम न करके दूसरा करता है तो जो हम चाहते हैं उसको, उससे ये काम लें, ये चिंतन कराएं, और वो नहीं करे, दूसरा करता रहे, फिर कहें हम समय नहीं है, तो इसमें किसकी कमी हो गई, किसका अटेंशन कम हुआ। अगर ऐसा होता है तो इसको भी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, इसको भी दूसरे शब्दों में कहेंगे देही अभिमानी की स्थिति नहीं है। आत्म अभिमानी, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मैं आत्मा हूं, पर आत्मा अपने को, अपने पर अटेंशन रख करके अपने मन बुद्धि से जो काम कराना चाहे वो कराती रहे। अगर नहीं करा सकती है तो आत्मा में शक्ति हुई। अब ये शक्ति हमारे अंदर कैसे इमर्ज हो, तो बाबा ने भी बताया, अव्यक्त मुरली आप लोगों को याद है, रिवाइज की है रिवाइज, भाई क्या बोलेंगे, की है रिवाइज। देखो कोई का भी कांध ऐसा नहीं हिलता है, हाथ उठवाए रिवाइज की है जिन्होंने, तो हम सुनते हैं यहाँ पर, यहाँ तो हमको टाइम ही टाइम है। और यही बात बाबा ने कही कि रिवाइज करो, इतना भी कहा, जब सुनते हो जो विधि बाबा बताते हैं, जिस समय जो जो बाबा पॉइंट्स बताते हैं अथवा जो जो विधि बताते हैं, उनका फौरन अभ्यास करो। अगर उसका फौरन अभ्यास करेंगे तो उससे आपको जल्दी लाभ मिल सकेगा, अर्थात उसका सहज अनुभव कर पाएंगे। अगर उसको फौरन अभ्यास नहीं करते हो, बाप तो खजाना देता ही जाता है, लेकिन उस खजाने को अगर हम उसका फायदा नहीं ले सकते हैं, कापी में जमा है इसका मतलब ये नहीं अंदर मेरे जमा हो गया। सुना ना, अभी अपनी शक्ति इमर्ज करनी है, शक्ति बनानी है, आत्मा में वो शक्ति चाहिए। अब वो शक्तियां हमारी कैसे इमर्ज होंगी? बाबा हमको शक्तियां इमर्ज करने की विधि बताता रहता, जब हम उसको अभ्यास करेंगे तब तो वो हमारे अनुभव में शक्ति आएंगी। मधुबन में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, भले खजाना बहुत मिलता है, क्योंकि विशेष समय निकाल के आते हो तो विशेष खजाना दिया जाता है, लेकिन उसको उसी समय कैसे अभ्यास करें, ये अगर यहाँ विधि आप समझ लें और करते रहें, तो जितना अभी फायदा मिलता है सुनकर के खुश होते हैं, और एक वायुमंडल हमको वो अनुभव कराता है, वायुमंडल का प्रभाव हमें अच्छा लगता है और मन बड़ा शांत अथवा याद में सहज है। वायुमंडल के साथ साथ अगर हम अपने में वो शक्ति जागृत कर लेते हैं तो वो भी सहज बनती जाएंगी ना। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना इस वायुमंडल के अंदर शक्तियों का अनुभव भी हम बड़ा सहज कर सकेंगे, और जब सहज हम शक्तियां अनुभव कर सकते हैं तो वो फिर हमको वहां मदद करेंगी जहां हमें मेहनत करनी पड़ती है। यहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज स्वाभाविक, सिर्फ हमारे अटेंशन देने की कमी है। तो बाबा ने अभी तो उस दिन अव्यक्त बाबा दाता ने यही बात बताई है, कैसे तुम अपने अनुभव स्वरूप को बढ़ाओ, अनुभव स्वरूप बनो, कैसे बनो, वो विधि बताई। और उस विधि को भी हमने अभ्यास में नहीं लाया तो और ऊंची ऊंची बातें, डबल लाइट बन जाए, फरिश्ते बन जाए, सूर्य चांद तारा गण से पार, परम धाम हमारा घर तो है, जाना तो है वहां, लेकिन समझ करके ही चलते रहें तो अनुभव हम कब करेंगे? भले अनुभव करते रहते हैं परंतु ये अनुभव सदा काल बना रहे। अभ्यास हमें इस बात का करना है, ऐसे नहीं कि अनुभव नहीं है या नहीं करते हैं, परंतु टाइम के अनुसार करते हैं और थोड़ा ही समय कर पाते हैं, लेकिन वो अनुभव हमारा सदा काल रहे, स्वरूप बन जाए, जो स्वरूप अपने आप जो अनुभव हमने किया है वो स्वरूप से दिखाई पड़ता जाए, इसके लिए भी तो हमें अभ्यास करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि रिवाइज करो। रिवाइज करने से जितना हम रिवाइज करते जाएंगे उतना हमें अंदर रियलाइज होता जाएगा, क्योंकि जो जो बात बाबा हमें कहते हैं, आज की विषय याद है ना, आज की विषय है रियलाइजेशन पावर। तो रियलाइजेशन पावर हमारे में आनी चाहिए, रियलाइज करने की शक्ति। ये तो हमने रियलाइज कर दिया कि हम आत्मा है, समझ गए, जान गए, मान लिया, अनुभव भी कर लिया, लेकिन हम सदा अपने को आत्मा समझ के चलते रहें। जिसको भी देखें, जहां भी जाएं, जो भी कर्म करें, चलते फिरते हम ऐसे महसूस करें आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही है। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रहा हूँ, ये बात हमको अंदर में स्मृति में आती रहे। मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रहा हूँ। जब हम चलते हैं, जब हमें और कुछ काम नहीं है, बस पता है यहाँ से यहाँ तक जाना है, उस समय हमारे अंदर ये बात इमर्ज हो, मैं आत्मा इन शरीर को चला रहा हूँ। अगर बार बार हमें ये स्मृति आती है और ये स्मृति हमें इमर्ज करनी है, बार बार अपन को याद दिलाना। कभी कोई कहते हैं हम जानते हैं ना हम आत्मा है, घड़ी घड़ी याद करने की क्या जरूरत है? घड़ी घड़ी याद करने की इसलिए जरूरत है कि वो हमारा नेचुरल रूप बन जाए। बल आत्मा गुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है, दिखाई ये शरीर पड़ता है, इसलिए उसका भान नेचुरल हो गया है। लेकिन जो शक्ति शरीर को चलाती है, तो शक्ति जो शरीर को चलाती है, जो चैतन्य शक्ति है, वो ही तो मैं हूं। जब मैं कहता हूं तो किसको कहता हूं? ये बोलने वाला कौन? ये पहेली तो हम सबकी समझी हुई है। जब समझ लिया है तो उसको हमें बार बार याद करके ऐसा रियलाइज कर लें, ऐसा स्वयं को पहचान लें, जो अपने आप वो स्मृति बनी रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जब एक दो को देखते हो, ऐसे देखो मैं आत्मा आत्मा को देखता हूं, फौरन ये स्मृति आनी चाहिए। जब आप ये अनुभव करके, जब उस समय आपको स्मृति आती है, जब समझो हम किसको देखते हैं और हमारे अंदर यह स्मृति आ गई, मैं आत्मा आत्मा को देखता हूं, आप देखो तो आपके अंदर का जो भाव है सारा ही बदल जाएगा। आपकी वृत्ति में चेंज आ जाएंगी, आपकी दृष्टि में चेंज आ जाएंगी, आपके बोल में अंतर पड़ जाएगा। वैसे जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दो, भले काम की बात ही बोलो, लेकिन जब यह स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा को देखता हूँ, तो आपके बोल का जो टोन है, आवाज का जो प्रभाव है, वो दूसरा हो जाएगा। यही बाबा कहते हैं बार बार याद करके ये अनुभव करो, तो वो फिर अनुभव सदाकाल चल जाएगा। इसको कहा जाएगा अनुभवी स्वरूप, जो बाबा ने बताया। और हर एक समझता है कि इस बात की कमी है। हम जानते हैं वास्तव में हम कौन है, कहाँ से आए हैं, पर ये स्मृति हमें भूल जाती है। कर्म करते हमें याद में रहना है, तो बाबा ने क्या बताया, चलते चलते जब हम पुराने हो जाते हैं, कर्म कोई योग समझते हैं, यज्ञ सेवा है, परंतु यज्ञ सेवा में ये स्मृति रहे, भगवान का यज्ञ है, हम भगवान के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, तो ये स्मृति होने से जब अंदर में आप सोचो भक्ति मार्ग में, आप लोगों को किन्नों को तो अनुभव भी होगा, किन्नों ने किसको देखा होगा, भक्ति मार्ग में जब गुरु लोगों से मंत्र लेते हैं तो काम करते भी उसका मंत्र चलता रहता है, काम करते रहेंगे हाथों से, कहीं कहीं तो ऐसा अभ्यास करते हैं जो बोलते रहते हैं, जो कुछ बोलना है दूसरे मुख दूसरा कुछ बोल रहा है, लेकिन उसका जपा जाप मंत्र चलता रहता है। ये अभ्यास की बात है। वो तो फिर भी स्थूल में मंत्र लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, ये तो सूक्ष्म हम स्वरूप है, लेकिन ये हमें रियलाइज हो कि इसका हमें पूरा पूरा अभ्यास करना है। बाबा ने कहा उस समय बात समझ में आई, ये बात तो बरोबर है। बरोबर है का मतलब कि हमें हमने सब समझ लिया कि ऐसा बरोबर है, अनुभव की कमी है, अनुभव स्वरूप बनना है, बनने का अभ्यास वहां जाके करेंगे और वहां जाने के बाद तो अपने व्यवहार में भी बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। मिलता है एकांत का टाइम, जो जरा एक घंटा दो घंटा बैठ करके शांति से अपना अभ्यास करो तो यहाँ तो कर सकते हैं ना। भले क्लासेस का टाइम है लेकिन तो भी अगर हम एम रखें तो हमें समय मिल जाता है, क्योंकि यहाँ शरीर का इतना काम नहीं है जो शरीर थक जाए। परंतु जितना हम अटेंशन रखेंगे, अटेंशन रखने से हम कर सकते हैं, क्योंकि अटेंशन रखने से मन बुद्धि अलर्ट हो जाती है, चुस्त हो जाते हैं। जैसे जागृत अवस्था में मनुष्य कैसा चुस्त रहता है, परंतु अगर सुस्ती है तो कैसे वो उसकी बैठक कैसे होती है। और जब जागृत अवस्था में है, अटेंशन से सुनते हैं, तो उस समय उसकी बैठक, उसका देखना, उसका सुनना कैसा लगता है, उस और उसमें अंतर है ना। ऐसे ही ये मन की स्थिति बन जाती है। ये जरा हम अपने आप को अंदर से देखते रहे ना तो अपने को रियलाइज हो कि कैसे हमें अपने को आगे पुरुषार्थ में लाना है, क्या क्या उन्नति करनी है। हम चाहते हैं अपनी चाहना को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं शक्तिशाली है ना। और दूसरी बात कि हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाप है। जब बाप साथ है तो बाप के साथ से तो हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बाप हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करता है ना। तो जब बाप सर्व मनोकामनाएं पूरी करता है, हमें ये कामना है, हमें ये इच्छा है कि हम अपने स्वरूप में सदा स्थित रहे, निरंतर हमारी याद बनी रहे, ये हमें इच्छा है। तो बाबा ये कामना पूरी नहीं करेगा, परंतु कैसे करेगा, जब बच्चे का इतना अटेंशन रहेगा, जब हम उसको उसका अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास के बिना तो अनुभव नहीं होगा ना, हर बात का अभ्यास चाहिए। भले ये हमको अभ्यास हो गया है, क्योंकि समझ में आ गई, हम जानते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अभ्यास कितना है, जब मैं आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ तो मेरे दैवी गुण इमर्ज होने चाहिए, जो आत्मा का स्वरूप है। क्या आत्मा का स्वरूप है, वर्णन करते हैं ना हम, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो देखो हमारे अंदर वो इमर्ज है, सदा हम ऐसा महसूस करते हैं आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप के चिन्ह क्या होते हैं, क्या हमारे शक्ल पे वो चिन्ह आएगा, वो चमक कौन सी होंगी, वो हमारे पे रहती है। हम दूसरों को वो आनंद अनुभव करा सकते हैं हर समय। इसको कहा जाएगा कि हम अपने को रियलाइज करते हैं। जो हमारी रियल आशा, जो हमारी रियलिटी है, आत्मा की जो रियलिटी है, सत्यता जो आत्मा की है, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिनका हम वर्णन करते हैं, जिसकी हमें नॉलेज मिली है, जिसको हम समझ चुके हैं, जिसको हमने पहचान लिया है, जिसको हम मानते भी है, ठीक है ना। ये सब बातें, जान भी लिया, नॉलेज मिली, उससे जानकारी हुई, जानने से हमने मान लिया, मानने से पहचान भी लिया। अब और आगे क्या करना है, पहचानने के बाद वो स्वरूप हम बना रहे, अनुभव भी किया। जब योग में बैठते हैं, जब हम यथार्थ रीति से विधि पूर्वक जब योग में बैठते हैं, जब हमारे अंदर और कोई संकल्प नहीं चलते हैं, बस यही संकल्प है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बस एक बाप की याद जब अपने मन के अंदर बनी रहती है तो ये अनुभव होता है ना। बाप की लगन में जब अब मग्न बन जाते हैं तो परमात्मा की लगन में मगन रहने वाली कौन? आत्मा ही है ना, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन किसका होगा? आत्मा का हो सकता है, शरीर का नहीं हो सकता है। तो ये हम अनुभव करते हैं कि बरोबर मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा जो अनुभव करती हूँ वो मुझे अपना ओरिजिनल स्वरूप, जो मेरा रियल स्वरूप है, वो सदा मुझे याद रहे। याद शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अनेक जन्मों से हमने अपने को देह समझ लिया है, तो अनेक जन्मों का ये अभ्यास है देह भान में रहने का, इसलिए घड़ी घड़ी बोला जाता है याद करो याद करो याद करो। नहीं तो थोड़े ही अपने को कोई थोड़े याद करता है, परंतु अपने को याद तब नहीं करता है जब वो स्वयं जैसा है वैसा समझ के चलते हैं। लौकिक रीति से शरीर का नाम कितना पक्का है? शरीर का काम, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा संबंध है, जिस परिवार में रहते हैं, कितना पक्का है और कितना नेचुरल है। समझाने में तो हम कहते हैं जैसे बच्चे को बाप की याद नेचुरल रहती है, समझाते हैं ना लौकिक रीति से, वैसे आत्मा को परमात्मा की याद रहनी चाहिए। अब चाहिए हम शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं है। तो जब हम कहते हैं याद रहनी चाहिए, तो हम अपने आप से पूछें, हम समझते हैं हमको ये याद रहनी चाहिए, कैसे रह सकती है? जवाब आता है अभ्यास करने से। क्या अभ्यास करें? देखो क्या जवाब आता है, पूछो अपने आप से क्या अभ्यास करें। यही अभ्यास करे जो मुझे नॉलेज मिली है, जो पहचान मिली है, जो बात मैं मान चुका हूं। तो क्या मानता हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं ये आंख नहीं हूं, परंतु आंख से देखने वाली शक्ति हूं। तो ये अंदर स्मृति आती रहे। जो विस्मृति हुई है वो स्मृति बार बार आने से स्वरूप बन जाता है। देखो लौकिक में भी, पढ़ाई में देखो, जो भी पढ़ाई पढ़ते हो, जो भी स्टेटस के लिए हमें जो पढ़ाई मिलती है कितनी याद रखते हो, फिर पढ़ने के बाद उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं मेडिकल में, फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाकर के कोई स्टेटस पर, माना वो डॉक्टर बन करके, और करते हैं वो डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता ही रहता है। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसको डॉक्टर माना जाएगा? माना जाएगा? जो जो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के समय उसको याद करता रहता, जब याददाश्त बुद्धि में आ जाती है और कुछ स्टेज तक पहुंच जाता है, तो जितनी पढ़ाई की उसको एक्सपेरिमेंट में लाता है। परीक्षा में क्या करती है? जितनी पढ़ाई की है वो परीक्षा में वो उसका पेपर देते हो ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होती है, और एक्सपेरिमेंट के बाद भल स्टेटस पे आ जाते हैं तो भी वो वर्क करते ही रहते हैं। अगर वो नहीं करे, जो भी स्टेज, जो भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में उसको वर्क करते ही रहना पड़ता है, तब तो उसका वो प्रोफेशन माना जाता है। चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, कोई भी है, अपने स्टेटस पर, अपने प्रोफेशन में वो काम कॉन्स्टेंट करता रहता है। हम अपने आप से पूछे हम क्या करते हैं? लौकिक कार्य में हर एक अपना अपना करता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अपने अंदर इसको रिवाइज करो। रिवाइज कहने का मतलब ही ये है कि जितना हम रिवाइज करेंगे, बाबा ने आज ये बोला है, अब ये आप बार बार उसको रिवाइज करो, तो आपको अंदर रियलाइज होगा ना कि ये बाबा ने कहा है। अब उसको रिवाइज करते करते फिर अपने से लगाएंगे। रियलाइज करना माना वो बात हम अपने से लगाएं, तो सचमुच ये रियल मेरे में है, मैंने सच सच इस बात को पूरा अपने में अनुभव किया है। मैं अपने को मानता तो हूँ आत्मा हूँ, पर जो आत्मा के लक्षण है, गुण है, जो आत्मा का स्वरूप मैं वर्णन करता हूँ, वो मुझे बार बार अनुभव होता है। जब मैं किसको देखता हूँ तो उस स्नेह से देखता हूँ, जब मैं किससे बोलता हूँ तो उस बोल में वो मुझे स्मृति रहती है। तो ये अपने से अगर हम उसको बार बार याद करेंगे, रिवाइज करेंगे बाबा के महावाक्यों को, तो ये अंदर में हमको रियलाइज होता जाएगा। जब रियलाइज होता है तो रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, रियलाइज के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन आती है, परिवर्तन आता है। केवल समझने से परिवर्तन नहीं आएगा, पर समझने के बाद जब हम उसको रियलाइज करते हैं, अंदर अंदर में ये आता है बरोबर, ये ऐसी बात है। जब ये मन में बैठ जाता है ये देह को देखने का, बार बार और बातों को याद करने का, मन का काम क्या है, संकल्प ही करना है ना। तो वो संकल्प क्या करता है, जो कुछ देखता है, जो करता है, जो किया हुआ है, वो ही उसके पास संकल्प बार बार आते हैं। तो बार बार उसको उस संकल्प के बदली हम ये संकल्प देते हैं, तो बार बार ये शुद्ध संकल्प करने से उसमें ये परिवर्तन आता है। जो जो पहला संकल्प है वो बदल जाता है, और बार बार शुद्ध संकल्प आने से अंदर आत्मा में शुद्धता की शक्ति भरती जाती है, आत्मा इमर्ज होती, जो आत्मा समा गई है, मानो मुझे जो भूल गया है, जो मुझे नेचुरल स्मृति नहीं आती, वो भान नहीं रहता है, वो जब मन इसको बार बार रिवाइज करता है, स्मरण करता है, तो वो स्मृति मुझे इमर्ज होती है, वो भान आता है, अर्थात आत्मा उसका अनुभव करती है। जिस अनुभव से उनकी जो शुद्धता है, आत्मा वास्तव में तो शुद्ध है ना। पहले पहले आत्मा में ये विकार थे क्या, थे विकार। जब मैं परम धाम निवासी हूं, तो ऐसे हम अपने आप आपसे बात करें, जब मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं, बाप के साथ में रहती हूं, अपने उस ज्योति घर में निवास करती हूं, तब मेरा स्वरूप कैसा है। अब यही बात आप अंदर ही अंदर ये मन संकल्प करता रहे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो सारा अपना ज्योति स्वरूप इमर्ज हो जाएगा, और उससे आपको महसूसता आएगी, मैं कितना शुद्ध हूं, कितना पावन हूं। जब ये अंदर में महसूसता आती है, तब हमारा जो अंदर में गुण है वो परिवर्तन हो जाते हैं, और फिर वो परिवर्तन होने से हमारे कर्मों में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसको कहा जाता है कर्मों में दिव्यता, अर्थात दैवी गुणों से हम हर कर्म करते रहे, इसको कहा जाता है स्वरूप बनना। स्वरूप तो तब ही माना जाएगा जब हमारे कर्मों में, जब हमारे लक्षणों में, जब हमारी दृष्टि वृत्ति में सदा वो दिव्यता बनी रहे, उसमें सदा स्वरूप बनने में ये सदा शब्द आता है, ये परिवर्तन हमारा सदा बना रहे। आप सबको अनुभव है, जब शुरू शुरू में आती है तो कितना उमंग से इन बातों को सोचते रहते, और अपने में जल्दी परिवर्तन आ जाता है, और 2-3 वर्षों के बाद फिर कहते हैं ये आदत पता नहीं क्यों नहीं छूटती है। अरे शुरू में आए तो इतनी आदतें खत्म हो गई, बाकी एक छोटी सी आदत नहीं छूटती है, व्यर्थ संकल्प पता नहीं क्यों आते हैं, हम शुद्ध बन गए और व्यर्थ आया कहां से। ये अपने आप से हम रियलाइज करें, अपनी रियलिटी को अंदर ही अंदर बार बार इमर्ज करें। जैसे साइंस वाले है ना, वो कोई भी वस्तु को एनालाइज करके देखते हैं क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है, ये कैसे चीज बनी है, फिर उसको तोड़ फोड़ के उसका सारा वो निकालते हैं, एनालाइज करते हैं क्या है। तो बाबा ने को हमें आत्मा का पूरा परिचय दे दिया है, आत्मा क्या है, बाबा ने परिचय दे दिया, हमें समझ में आ गया। अभी हम उसको रियलाइज करते जाएं, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा को, मैं आत्मा हूं, अपने को एनालाइज करते जाएं। कैसे करेंगे? जैसे बाबा ने बताया है उसको बार बार याद करते करते फिर अपने से मिलाते जाएं, मिलाते जाएं, मिलाते जाएं, कंपेयर करते जाएं। फिर जब खुद को कंपैरिजन करने आ जाता है रियलिटी से, रियल वस्तु क्या है, अर्थात मैं रियल क्या हूं, ओरिजिनल क्या हूं, सत्य स्वरूप मेरा क्या है, तो नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मेरे को वो समझ है, उसके आधार से हम अपने को कंपेयर करते जाए। तो जब अंदर में हमको रियलाइज हो जाता है ना, नहीं मैं इतनी शुद्ध वस्तु, मेरे में ये अशुद्धता क्यों रहनी चाहिए, जब अंदर ये रियलाइज होता है, अंदर में वो लग जाता है कि ये अशुद्धता मेरे में नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना शुद्ध स्वरूप है, तो फिर याद आता है उसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है, कैसे तुम अपने को शुद्ध बना सकते हो। तो हमारे अंदर शुद्ध संकल्प चलता रहे, क्या शुद्ध संकल्प चलता रहे, उसके लिए बाबा हमें रोज रोज स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। है छोटी सी बात, सबको समझी हुई है, कहेंगे ये तो पहले दर्जे की बात है, पर बाबा कहती है पहला लेसन कितना याद किया है, कितना प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, और दुनिया में रहते हैं, टाइम कम मिलता है, सोच भी अधिक दुनिया के व्यवहार में चला जाता है, अब उसको हमें डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, व्यवहार भी छोड़ना नहीं है क्योंकि शरीर है, तो शरीर निर्वाह भी करना है, पर शरीर के साथ आत्मा भी है, तो आत्मा को भी जागृत रखना है, उसकी भी ज्योति जगी रही। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें उसको सब कुछ देना पड़ता है ना, खाना पीना पहनना सब कुछ करना, ठिकाना सब देना पड़ता है ना, तो जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए हमें आजीविका का पूरा साधन हर समय अपनाना पड़ता है, वैसे आत्मा को जागृत रखने के लिए, आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे, उसके लिए क्या क्या करना है, बाबा ने क्या क्या बताया है, ये याद करते और वो हम करते रहे, जिससे आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे। वो अंदर है ज्योति, ये बाहर है, तो ये शरीर जो काम करता है, शरीर निर्वाह के लिए जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं, अभी आत्मा के लिए, आत्मा ना काम करेंगी तो कौन करेगा, शरीर के लिए शरीर काम करता है, कर्म इंद्रिया करती है ना, वो भी तब करती है जब मैं उसमें हूं, तो मैं इस शरीर को, जड़ को जीवित रखने के लिए सब कुछ करता हूं, और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जो ज्योति प्रकाश देती है, शक्ति देती है, जिसके अंदर इतनी शक्तियां भरी हुई है, जिसका स्वरूप सबको सुख देता है, ऐसे स्वरूप को सदा कायम रखने के लिए मैं विधि नहीं अपना सकता हूं। और विधि कितनी सहज, जिसमें हमको स्थूल में बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये मन, जैसे शरीर के आजीव का, शरीर के व्यवहार के लिए पूरा शरीर उसमें व्यस्त हो जाता है ना, काम में हाथ भी चलते, आंखें भी देखती, मुख भी कहां जरूरत पड़ती काम करता चलते, तो शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां आजीविका के लिए अपना काम ठीक से उसमें लग करके करती है ना। ऐसे आप अपने आप से पूछो, आत्मा की ज्योति सदा प्रकाशित रहे, तो आत्मा क्या है, उनकी सूक्ष्म शक्तियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा की ज्योति जगी रहे, मैं आत्मा सदा जागृत ज्योति स्वरूप रहूं, उसके लिए मन बुद्धि सदा काम करता रहता है उनके लिए। जैसे शरीर के लिए शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां काम करती है, लगी रहती है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आती है ना बात। वैसे आत्मा की ये सूक्ष्म शक्तियां, आत्मा जो मन बुद्धि संस्कार वाली है, तो आत्मा की ज्योति सदा तब जगी रहेंगी जब ये मन बुद्धि सदा आत्मा के प्रति ही सोचते रहे। उनका स्वभाव, उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनको कैसे सारा समय हमारी ज्योत जगी रहे। स्थूल में दीपक जगाते हैं, उसकी ये ज्योति जलती है, वो ज्योति जगी रहे, क्या करते हैं, घृत डालते रहेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे ना, घृत बैराजन देखेंगे थोड़ा कम होने पर है डाल देंगे, करते हैं ना ऐसा। हम कैसा कौन सा घृत डालेंगे, देखो जानते हो ना, सब पता है, जानते हैं, करते क्या है, हाँ भूल जाते हैं। अभी भूल जाते हैं शब्द कोई भुला दो, समझो हमारी डिक्शनरी में भूल जाना शब्द है ही नहीं ब्राह्मणों के डिक्शनरी में। ब्राह्मण है ही सदा याद स्वरूप। जब आत्मा शुद्ध है तो उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध, शुद्ध बुद्धि कितनी विशाल होती है, कितनी दूरांदेश। बाबा ने हमको आदि मध्यांत का ज्ञान दे दिया है, इतनी दूरांदेश बुद्धि बना दी, तो शुद्ध बुद्धि त्रिकालदर्शी बुद्धि है, क्योंकि ज्योति जगी हुई है, अंधकार नहीं है, अशुद्धता नहीं है, मैल नहीं है, उज्जवल है। तो ये हम सदा उज्जवल रहें, उसके लिए जो ज्ञान का घृत बाबा हमारे में डालता रहता है, और हम क्या करते हैं, जैसे आजकल नहीं मंदिरों में वो उनको भाई घी दे के आएंगे और वो किनारे कर देंगे, फिर कभी डालेंगे कभी नहीं डालेंगे, खैर ज्योति को बुझने तो नहीं देंगे, परंतु फिर धीमे धीमे मंदी मंदी चलती रहे हैं। तो ऐसे तो हम नहीं करें ना, आज के जमाने का प्रभाव हमारे पर ना पड़े, क्योंकि हमें समय को परिवर्तन करना है, हमें विश्व को परिवर्तन करना है, हमें ये याद रहे कि हम विश्व परिवर्तक हैं। बाबा ने हमें विश्व के कल्याण के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए, और कौन सी विश्व, सतो प्रधान विश्व बनानी है हमें। तो जब सतो प्रधान विश्व बनानी है तो स्वयं को आत्मा इतनी सतो प्रधान, इतनी प्रकाश में बनी रहे, तब तो हमारी ये लाइट प्रकाश सबको रास्ता दिखाएगा, सबको परिवर्तन की शक्ति देगा। इतना हम अपने को निमित्त समझ के और अपने में ये जागृति जगाते रहें, इसको कहा जाता है, बाबा ने इसको कहा है रिवाइज करते रहो। रिवाइज करते रहेंगे तो अंदर रियलाइज करते रहेंगे, और जितना अपने अंदर में रियलाइजेशन होगी तो हमारे में परिवर्तन आता जाएगा। सदा ज्योति जगी रहेंगी तो ये परिवर्तन हो गया ना। तो अभी ऐसे समझो कि आत्मा की जो ये शक्तियां मन और बुद्धि, उसका काम है। भले शरीर निर्वाह के लिए शरीर की कर्म इंद्रियों को जितना उससे काम चाहिए उनको भले दे दे, लेकिन उसका काम क्या है कि अपने जो उसकी शुद्धता है उस शुद्धता को कायम रखे। मेरी शुद्धता कायम कैसे रहे, अर्थात मैं आत्मा जो ज्योति स्वरूप हूँ, मेरी ज्योति सदा जगती रहे और इतनी उज्जवल रहे जो औरों को प्रकाश देती रहे। तो वो उज्जवल तब रहती है जो जितना उसमें घृत पड़ा हुआ होगा उतनी उज्जवल रहेंगी। तो जितना मन और बुद्धि ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली रहेंगी, आत्मा की शुद्धता प्रत्यक्ष होती जाएगी, आत्मा के अंदर जो उनका स्वरूप है वो प्रत्यक्ष होता जाएगा और उनके अंदर अर्थात मेरे अंदर जो दिव्यता है दैवी गुण इमर्ज होते जाएंगे। हमारी वृत्ति के अंदर सदा वो रूहानियत दृष्टि एक दो को देखेंगे वही स्नेहमयी दृष्टि बन जाएंगी, बोल में मधुरता आ जाएगी। जो दैवी गुण हम समझते हैं, कोई कोई कहते हैं ना कि नहीं मुझे क्रोध आ जाता है, क्यों आ जाता है, देवान है, कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसको अच्छी नहीं लगी, चलो उसने दो वचन बोला उसका काम उसने किया, मेरा काम मैं अपने स्वमान में रहूं, उसके कहने से मैं अपना स्वमान छोड़ दूं, छूट जाता है, क्यों, कारण कि अपनी ज्योति जगी हुई नहीं है तो अंधेरा आ जाता है। ये अंधेरा है ना, अज्ञान अंधेरा आ जाता है। भले ये पहला लेसन है, शुरू में ये बात बताई जाती है, पर इसको ही बाबा कहते हैं पक्का करो दिव्यता हमारे अंदर इमर्ज होती जाए। वो दैवी गुणों का गुलदस्ता दिखाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, बीज क्या है, दैवी गुणों का झाड़ दिखाते हैं ना, गुलदस्ता दैवी गुणों का किताब है ना बना हुआ और एक चित्र बना हुआ है, उसमें उसका बीज क्या दिखाते हैं, आत्म अभिमानी उसका बीज है। तो अगर ये बीज पड़ा हुआ है तो दिव्यता अपने आप दैवी गुण इमर्ज होते जाते, आत्म अभिमानी से ये पवित्रता रूपी ये जड़, और उस जड़ से जब पवित्रता आ जाती है तो फिर उसी जड़ से ये दिव्यता दैवी गुण इमर्ज होते जाते हैं, अर्थात कर्म इंद्रियों में दिव्यता आती जाती है, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती है, उनकी चंचलता खत्म हो जाती है, क्योंकि मन की चंचलता खत्म हो गई ना। जब मन का भटकना बंद हो गया, मन की चंचलता खत्म हो गई तो कर्म इंद्रियों में चंचलता कहाँ से आएंगी। ये आंखें जो बड़ी धोखा देती है ना धोखा, आंखें पता नहीं चलता है, देखते देखते पता नहीं क्या क्या संकल्प चलता जाएगा। चलो कर्म में नहीं आएंगे पर संकल्प में तो मन पर तो असर हो गया ना। तो मन अगर दूषित बन जाता है तो आत्मा की ज्योति क्या होगी, प्रकाश जगा रहेगा, स्मृति विस्मृति का रूप ले लेती है, स्मृति नहीं रहती है, पर वो ऐसे हो जाता है खुद को पता ही नहीं चलता है। तो आंखें धोखा नहीं देती है, वास्तव में ये मन जिसको भटकने की आदत है, देवभान का बीज अभी तक पड़ा हुआ है, निकला नहीं है, समझा है मैं आत्मा हूं लेकिन वो भान इमर्ज हो, जिसको देखो देखो देखते याद आए ये आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, परमात्मा की संतान है, हम ईश्वरी परिवार में है, ये सब ईश्वर के बच्चे हैं, किसको भी देखे फौरन ये स्मृति जागृत हो। हम अपने आप से पूछें कितना बार हमको स्मृति आती है। चलो यहाँ आए हैं खुशी खुशी से, भी ईश्वरी परिवार में है, खुशी में रहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म स्मृति उसकी चेकिंग करो, इसको रियलाइज करो। आत्मा अति सूक्ष्म है। जब मैंने अपने को पहचाना कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ, बीज रूप हूँ, बीज के अंदर सारी शक्तियां होती है, तो मुझ आत्मा के अंदर वो शक्ति है जो मैं अपने मन को अपने बुद्धि को परख सकती हूँ। अभी अभी देखते देखते दृष्टि कैसे देवभान में आ जाती है, फौरन पता चल जाए, और फिर फौरन हम अपने को ज्ञान की स्मृति दिलाएं। नहीं तो फिर वो जो संकल्प भर गया ना, फिर वो घड़ी घड़ी वो संकल्प आता रहेगा, इधर उधर देखेंगे फिर वो संकल्प इमर्ज होगा, एक बार एक रीति से, दूसरे बार दूसरी रीति से, तीसरे बार पर वही देवभान का संकल्प इमर्ज होता रहेगा, और फिर उसी संकल्प में खुश होते रहेंगे, फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, और आखिरी उसकी रिजल्ट व्यर्थ संकल्प छूटते नहीं है। अरे अपने आप जानबूझ के व्यर्थ संकल्प इमर्ज किया वो पता ही नहीं पड़ा। तो आत्मा सदा जागृत रहे, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा रहता है क्या? वहां हर चीज स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ऐसे होता है ना। अभी देखो रोशनी है, कितना भी कोई दूर बैठा है पता चलता है ना, इधर बैठे है ये है, ऐसे है ना, जो चीज जहां जैसी रखी है पता चलेगा ना, कैसे भी कोने में होंगी रोशनी है तो दिखाई पड़ता है। जब आत्मा की ज्योति जगी हुई है तो उसको पता चल जाना चाहिए ना, ये संकल्प शुद्ध है या अशुद्ध है। उस समय पता नहीं चलता, चल जाता है संकल्प, तो ज्योति जगी हुई रही, आत्मा जागृत हुई, आत्मा को अटेंशन रहा अपना, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल रहा, मैं मालिक हूं, ये मेरी ही सूक्ष्म शक्तियां हैं, अपने आप काम करती रहती है, मालिक सोया हुआ है और उनकी शक्तियां काम करती रहती है। हाँ, उसको काम ऐसी आदत डालो जो जो उसका काम है वो करते रहे ना, और का काम क्यों करें, और ही फिर वो भी सो ही जाए, फिर पश्चाताप करते रहे, अरे ये क्या, फिर मेहनत करे तो छूटते ही नहीं, फिर उसका राज्य हमारे पर हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो सुनते हो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो तो रियलाइजेशन हो। चलते चलते बाबा ने बोला ना, चलते चलते ये भूल जाता है, तो अभी भूल जाता है अपनी डिक्शनरी से निकाल लो। सदा याद रखो, नहीं हमें याद है, हमें याद है, हमें याद करना है, भूलना नहीं है पर याद करना है। क्या याद करना है? तो याद आएगा ये बाबा की बात, आज बाबा ने ये बताया, आज बाबा ने ये बताया, ये तो हमारे लिए सहज मारे गए ना, बाबा रोज रोज बताते हैं, ऐसा भी नहीं चलो भाई मैंने एक बार बता दिया अभी अपने आप मेहनत करो, नहीं, रोज रोज बताता है और साथ भी देता है, सिर्फ बता के छोड़ता नहीं है, नहीं पग पग पे रास्ता दिखाता है, साथ देता है, याद करो बाबा साथ है, पता चल जाता है ये राइट नहीं है तो मुझे नहीं करना है, उसका अटेंशन देना है। तो सदा अपने पर अटेंशन हो, समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को जो समझ आई उसको हम रिवाइज करें तो हमारे अंदर रियलाइजेशन आए, और रियलाइज हो तो हमारे में परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। और जब ऐसा हम अपने को कर सकेंगे, रियलाइज किया, अटेंशन दिया, अपने को जागृत रखा और अपने को परिवर्तन करते गए, तो हमारे अंदर वो शक्तियां इमर्ज होती जाएंगी। क्योंकि बाप हमारे साथ है, याद की यात्रा बनी रहती है, कनेक्शन जुटा रहेगा तो बाप से हमें शक्तियां मिलती जाएंगी, जिन शक्तियों के आधार से हमारे ये गुण माना दिव्यता हमारे अंदर इमर्ज होती जाएंगी और अशुद्धता अपने आप छूटती जाएंगी। ऐसे हम आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, जो मेरा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप गाया हुआ है, वो हमें अपने आप अपने में प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ेगा, अर्थात अनुभव होगा। जितना जितना वो हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप लेगा, अनुभव करते जाएंगे, तो हमारे जीवन के कर्मों में, हमारी कर्म इंद्रियों में दिव्यता इमर्ज होती जाएंगी और हमारा हर कर्म दिव्य अर्थात श्रेष्ठ बना रहेगा। जिन दिव्य कर्मों के आधार से, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमारा भविष्य श्रेष्ठ ऊंचा पद बना रहेगा। ओम शांति।